अब चलते हैं तीसरा पारा। इसका थीम इस सफ़र में बुखल है। बुखल क्या है, कैसे है, थोड़ा सा बुक के साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो फिर आपको साथ साथ समझ आएगी। यकीन करें कि अगर इस पारे को मैंने आपने इसके हक के साथ अदा कर दिया, आज के बाद हम बखील तो नहीं रहेंगे। आप कह लीजिए कि तीसरा पारा क्या है, बुखल A to Z। जिनके पास बुक्स हैं वो 52 पेज खोल लें, और जो ख़ुद लिख रहे हैं वो नोट्स लें। आइए देखते हैं कि तीसरा पारा क्या है और बुखल क्या है। पहले हम गो थ्रू कर लेंगे पूरे पारे को, और एंड पे इंशाल्लाह फिर बुखल के बारे में, जो एंड पे वक्त बचेगा, ज़्यादा वक्त उसको देंगे। तो तज़किए नफ्स की रोशनी में इस पारे को बुखल की रोशनी में देखेंगे। बुखल क्या होता है? बुखल ये है कि इंसान ज़रूरियात ज़िंदगी पर कुछ खर्च ना करें। इसकी कई किस्में हैं, लेकिन हम इसको दो बुनियादी किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर एक, शरीयत के मामले में बुखल, यानी जिसको वाकई अल्लाह ने फ़र्ज़ किया हम वो ना करें। अभी पता चलेगा आपको, आज कम से कम 15-20 किस्में आप देखेंगे बुखल की, यानी जब आप यहाँ से उठेंगे ना तो कम से कम 10 किस्म का बुखल तो आप समझ कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। शौक आ रहा? अल्हम्दुलिल्लाह। तो शरीयत के मामले में बुखल क्या है कि हर वो अमल जिस पर जहन्नुम की वाईद हो। बाज़ ऐसी भी चीज़ें हैं कि बख़ील के जन्नत में ना दाखिल होने की वईदें हैं। मसलन शरीयत का बुखल क्या है? ज़कात ना देना है ना बुखल, फ़र्ज़ सदक़ात भी अदा ना करना। मर्द है तो बीवी के ना नफ़के से हाथ उठाए में कमा ही नहीं रहा, घर बैठा है। बीवी है तो घर की जिम्मेदारियाँ नहीं पूरी कर रही। मर्द घर वालों को खर्च देने में तंगी तुरशी करता है, एक एक पैसे पे बीवी को तरसाता है, बच्चों को डांटता है। फिर इसी तरह जो शरीयत ने हम पे पाबंदियाँ लगाई हैं, मसलन 5 वक्त की नमाज है, तो अगर आप 5 में से एक नमाज छोड़ दें तो आप शरीयत के बखील हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, तो शरीयत के बुखल में हर वो चीज़ आ रही है जो अल्लाह ने हम पे फ़र्ज़ की है और हम उसको अदा नहीं कर रहे। मसलन नमाजें कम की, कुछ पढ़ी कुछ ना पढ़ी, इस्तेआत है मगर हज नहीं कर रहे। इसी तरह अपना माल और अपना वक्त अल्लाह की राह में नहीं देते। किसने दिया वक्त आपको तो आप उसी को वक्त नहीं दे पा रहे? किसने दिया माल आपको मुझे और आप उसी के नाम पे नहीं लगा पा रहे? क्या ये बुखल नहीं है? फिर इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है वो शरीयत का बुखल है, और इसके फ़राइज़ इस तरह पूरे न करने जिस तरह करने चाहिए, ये तो है शरीयत का बुखल। ये मारूफ है, एंड पे हम बात करेंगे डिटेल से। दूसरा बुखल शायद ही कभी आपने सुना हो, यानी दो बड़ी मेन किस्में, फिर इसके बाद आगे इसकी सब कैटेगरीज इंशाल्लाह हम देखेंगे। और वो क्या हैं? मुरव्वत का बुखल। मुरव्वत, मरूत कहते हैं, मरव्वत इसका अंदाज़ है। उर्दू में आपने एक लफ्ज़ सुना हुआ है मुरव्वत, असल में ये अरबी के लफ्ज़ इमरा से, मिरा। इमरात उनका लफ्ज़ सुना, चौथे पारे में आएगा, इमरातुल इमरान बीवी को कहते हैं, मरुन मर्द को कहते हैं। तो मर्द और औरत इसी की जमा, फिर इमरात उनसे निसा होती है। ठीक है, तो मेरा मिरुन औरत और मर्द। तो मुरव्वत का बुखल क्या है? जिसको आप किसी शरीयत के कायदे पे ना भी परख सकें, हलाल हराम में उसका नाम ना भी आए, लेकिन इंसानियत के नाम पे, रवादारी के नाम पे ये नापसंदीदा बात होती है। याद रखिए कि अगर औरत को इमरातुन या मर्द को मरुन कहते हैं ना, तो इसमें क्या है कि मुरव्वत इंसान की फितरत में रची बसी है। ये जो आज आप कहते हैं ना कि नहीं नहीं हमें किसी से कोई लेन देन नहीं करना, अच्छा इसमें हमारे अपने देसी लोग बहुत अच्छे होते हैं, हेल्पफुल, दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व होना। बस दफ़ा मुशरिक लोग भी मुरव्वत होते हैं, साथ बैठे में सब गए, बैग खोलेंगे, सेब निकाला, खाना शुरू हो जाएंगे, किसी को नहीं पूछते। जहाज़ में बैठे में सीट पे अपना बैग खोला, उसमें खा रहे हैं, टिक टिक खाना शुरू कर दिया। हम मुस्लिम्स ने शुरू से क्या सीखा? पहले दूसरों को पेश करो। और एयरपोर्ट में या जहाज़ों में जब आप ऐसा किसी दूसरे के साथ करें तो बड़े हैरान होते हैं, यानी बाहर के लोग दूसरों के हाथ का खाना नहीं खाते, उनके लिए नई चीज़ है, उनको कहा जाता है किसी को ना दो ना किसी का लो। तो मुरव्वत क्या कहती है? पहले दूसरे को पूछो फिर अपने आप को पूछो। अब कितना ऑकवर्ड लगता है, चार लोग आपके साथ बैठे हैं और मैं अपने बैग में से बादाम निकालूं, 5-6 अपने सामने रख के खाने शुरू करूं, मुझे क्या चाहिए? आपको दूं। तो मुरव्वत क्या है? रवादारी हो और گنجائش ہوتے ہوئے بھی مقروض کو قرض کی مہلت نہ دینا، یہ بھی مروت میں آتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کا حق دینے میں جلدی کرنے کی بجائے دیر کرنا۔ ہم اس پورے پارے میں کہاں کہاں ذرا دیکھتے ہیں کہ بخل کا حصہ دیکھیں گے اور بخل کہاں آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آیت 267، اب آپ اگر آیتوں کے نمبر ہی صرف نوٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر بھی فائدہ آپ کو ہو جائے گا اس سے۔ آیت نمبر 267 میں بخل کی بات آئے گی، اس میں ہمیں اپنے عمل کی بہت سی چیزیں ملیں گی اور محاسبہ کرنے کا موقع ملے گا۔ یعنی سب سے زیادہ اس بارے میں جو بخل پہ بات ہو سکتی ہے وہ آیت 267 پہ ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم بخیل تو نہیں ہیں۔ تو اگر ہم تیسرے پارے کا خلاصہ دیکھیں تو نوٹ کیجیے آیتوں کے نمبر۔ پہلی ہی آیت 253 میں تلک رسل فضلنا بعدہم علی بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک میسج دیا، اور وہ کیا ہے کہ دوسرے گروہ کے دینی رہنماؤں کی خوبیوں کے اعتراف میں بخل سے کام نہ لو۔ بعض دفعہ ہم اپنے مسلک، اپنے استاد، اپنے لیڈر کے حق میں اتنے ڈیفنسو ہو جاتے ہیں کہ دوسرے کی خوبی کا اقرار نہیں کرتے، تو یہ بخل ہے۔ بعض دفعہ دوسرے لیڈرز کو صرف اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ہمارے نہیں ہیں۔ پھر آیت 254 میں بخل سے نکلنے کی پہلی ترکیب ہے کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور پھر آیت 255 جس کو سب کو پتہ نام اس کا، آیت الکرسی کہتے ہیں، اس میں اللہ نے بخیل کو جھنجھوڑا ہے کہ تمہارے مال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ کو اپنے دل پہ لیجئے۔ اگر ہم اللہ کے راستے پہ اللہ کے نام پر کچھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کی ضرورت نہیں، اللہ جس کو دینا چاہے دے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 256 میں شریعت کا بخل دکھایا گیا طاغوت کی صورت میں، کہ کس طرح اندھیروں میں رہنے والا روشنیوں سے بخل کرتا ہے۔ مزہ آتا ہے اندھیرے میں رہنے والے کو، ایک وقت آتا ہے کہ اندھیرا اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں خامیاں نہیں نظر آتی نا، گندگی نہیں دکھتی اندھیرے میں۔ اسی طرح بعض دفعہ بندہ غلط کام کر کے انجوائے کرتا ہے، اس کو کہتا ہے مجھے قرآن کی روشنی نہیں چاہیے، ہاں خواہ پڑھ لیا تو پھر عمل کرنا پڑے گا، پڑھ لیا تو سیکھنا پڑے گا، دس اینڈ دیٹ، اور ایسا شخص پھر اپنے آپ کو طاغوت کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ پھر آئے 261 سے 262 کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بتاتا ہے کہ دیکھو میرے خزانے تو اتنے بڑے ہیں کہ تم ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو تو اس سے کم از کم 700 دانے نکلتے ہیں، پھر تم کیوں اتنا بخل کرتے ہو؟ ڈر لگتا ہے تمہیں اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہوئے؟ تمہارا خیال اللہ رکھ لے گا تمہارا؟ ذرا آپ بتائیے کہ آپ کو کوئی 1000 روپے کی کوئی چیز دے جائے تو آپ رکھ لیتے ہیں اس کی؟ کیا خواہش نہیں ہوتی کہ کبھی بھی موقع ملا تو میں کم از کم 1000 کی تو اس کو بھی دوں؟ تو کیا اللہ رکھتا ہے؟ یاد رکھیے، ہم اپنی ذات پہ کیوں نہ لگائیں، ہم اللہ کے دین پہ کیوں نہ لگائیں، ہم اپنے بچوں پہ کیوں نہ لگائیں، یہ سب اللہ اپنے ذمہ رکھتا ہے اور ایک ایک چیز پلٹا کر واپس لاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آیت 262 سے 264 تک اللہ نے توجہ دلائی کہ دے کر ضائع کرنا بخیل کی عادت ہے۔ پہلے کر لیتا ہے خرچ اللہ کے راستے میں، کسی کو دے دیا بعد میں جتلانے لگا، ماسیوں کو دیا پھر تانے دیے، تمہیں تو اور دیں، روز دیں، تم تو خراب ہو، تم تو ہو ہی بیکار، تم تو نہ قدری ہو، تو کسی کو دیے نا تو آگے سے جتلائیے نہیں۔ پھر آئے 265 میں بتایا گیا کہ جس نے بخل کیا اس نے زندگی کا لگا لگایا باغ موت کی صورت میں جلا دیا، اور اس کو نیکیاں راس نہیں آئیں گی۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو شروع زندگی میں اچھے کام کرتا رہا لیکن آخر میں چھوڑ دیے اور اسی پہ اس کی موت آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم میں سے کسی کا انجام برا نہ کرے۔ دعا کیجیے، اللہم انا نسألک سوء الخاتمہ، اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا۔ اسی طرح آئے 272 میں بخیل شخص کی توجہ دلائی گئی کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے تمہیں واپس مل ہی جائے گا، کیوں دل چھوٹا کرتے ہو؟ اور یاد رکھیے کہ جب انسان کو یہ یقین آ جاتا ہے نا کہ جو میں دے رہا ہوں یہ اصل میں مجھے ملنا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا دل بڑا ہوتا ہے۔ آپ تو عام سسٹرز ہیں نا، مردوں کو یہ بات بہت اچھی سمجھ آتی ہے۔ بینک میں بڑے بڑے چیکس جاتے ہیں، پیسہ ہاتھ سے گیا، 1,00,000 روپے کے نوٹوں کی گڈی جا کر بینک میں ڈال دی، جواب میں ایک چھوٹی سی سلپ مل گئی جی کہ آپ کے اس بینک میں اتنے پیسے چلے گئے، خوشی سے لوگ دے آتے ہیں۔ بھلا کیوں دیتے ہیں؟ سیکیور ہو گئے، ہاتھ میں، گھر میں، چوری ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور بینک میں ہی گئے ہیں نا، اپنا بینک ہے، जब जाएंगे एटीएम कार्ड में डालेंगे मनी और जाके निकाल लेंगे, एक चेक लिखेंगे मनी आ जाएगी। हालांकि हो सकता है उस दिन संडे हो सकता है उस दिन एटीएम मशीन ख़राब हो, लेकिन एक उम्मीद पे आप देखिए लोग पूरे महीने की सैलरी हाथ में आने की बजाय बैंक में डाल देते हैं। अल्लाह पे इतना भी ट्रस्ट नहीं है क्या? अल्लाह पे आपको मुझे इतना भी एतबार नहीं है कि मैं उसके रास्ते में कुछ खर्च करूं, मैं उसके नाम पे कुछ दूं लूं तो क्या वो मेरा ज़ाया कर देगा? असल बात ये है कि जब यकीन आएगा ना कि मैं दे नहीं रही मैं ले रही हूँ, तो थोड़ा नहीं ज़्यादा देंगे। सहाबा तो बार बार आके पूछते थे या सलूना का माजा यूनफे कौन, खर्च क्या करें? हम कहते थे बचा क्या लें, वो कहते थे और कितना दें, हम कहते हैं और कितना कम कर सकते हैं आप हमारे लिए। याद रखिएगा सदके का लफ्ज़ को अगर आप देखें ना, सिद्क है सच्चा होना, अल्लाह के मामले में संजीदा होने की सच्चे होने की दलील क्या है कि आप अल्लाह के रास्ते में खर्च किस दिल से करते हैं? आप अल्लाह के रास्ते में 1,000 लगाते हैं ना, अल्लाह उसको 7,000 से ज़ायद में पलटता है कम से कम, और 70,000 में कर दे उसकी शान है। तो हमेशा दिल खुला रखिए, अल्लाह दे देगा वापस, अल्लाह के वादे हैं। इतने हज़ारों वाक़यात इसके ऊपर सुनकर यकीन आ जाता है, हमें अल्लाह की बात पे यकीन है, अल्लाह के नबी की बात पे भी यकीन कर लीजिए। मान कसर सदाकतु में मालिन, सदका देने से माल कम नहीं होता, और फरमाए वो भी सदका है जो तुम अपनी ज़ात पे लगाते हो, अपने बच्चों पे लगाते हो, अपनी बीवी पे लगाते हो। फिर इसी तरह आयत 273 में अल्लाह ताला बखील शख्स को तवज्जो दिलाता है कि अल्लाह के रास्ते के कैदियों को जो अल्लाह के लिए अपने आप को बांध लेते हैं, इनको ढूंढो, इन पर खर्च करो और अपने बुखल को ख़त्म करो। ये कौन से लोग थे? असहाबे सुफ़ा, इल्म के लिए डिवोट होने वाले। याद रखिए हर मुआशरे में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इल्म सीखने का बहुत शौक़ होता है, आप जैसे लोग, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब क्या हो, छोड़ दें? नहीं, मुखय्यर हजरात, वेल्दी पर्सन, मिलियनेरियन, बिलियनेरियन, अल्लाह की रहमतें हैं जिन पे, उनको अपने आप को पेश करना चाहिए। हम अपनी भी फीस देते हैं और आप हमारी तरफ से 3 स्पॉन्सर्स ले लीजिए। याद रखिए स्पॉन्सर और स्टूडेंट हमारा एक मुस्तकिल प्रोजेक्ट है, ऑनलाइन पे भी मुझे लगता है उसका लिंक डला हुआ है। काम तो होंगे ना, एक तो ये कि आप सारे काम डिगे चुले करें, एसी बंद करें, बिजली पानी पंखे बंद कर दें तो हसारी बेचारे रोते रहें क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा ये कि चले कम अज़ कम आप अपना ख़र्चा तो खुद अदा कर लेना। अब एक शख्स है वो खुशी से कर पाता है, उसके लिए कोई बड़ी कीमत ही नहीं है वो, और वो कीमत किसकी होती है? वो तो सिर्फ़ एक ख़र्चों में हिस्सा डालना होता है, कुछ बच भी जाएगा तो वो भी जाके उसी के अंदर ही बढ़ोतरी में आएगा ना। एक को लगता है कुछ बड़ी बात ही नहीं, वो कहता है मैं 4 लोगों का और भी हिस्सा देता हूँ। याद रखिए जिसने किसी दूसरे तालिब इल्म के लिए स्पॉन्सर किया उसने अपना फ़ायदा किया, उसका नहीं किया। तो हमेशा ऐसे लोग माशरे में रहे और होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं हमारा भी लें दूसरों का भी लीजिए। अक्सर हम लोग कभी भी ऑनलाइन पे या ऑन साइट पे बुक्स पढ़ाते हैं, छोटी बड़ी छोटी छोटी बुक्स होती हैं, स्काफ्स आते हैं क्लासेस में, ये मेरी बुक, ये 4 बुक्स के पैसे रख लें, जिसको मर्जी दे दीजिए मेरी तरफ से। उससे प्यारा सदका क्या कि आपकी किताब वहीं पढ़ी जाएगी। देखिए ना लोग मस्जिदों के बाहर खड़े होकर बांट रहे होते हैं दोओं की किताबें, कौन पढ़ता है? इधर की चीज़ उधर गई। सबसे बेस्ट सदका कुरान क्लास जहाँ हो रही हो, अब ये किताब पढ़ रहे हैं, ये मोटी किताब है, बड़ी किताब है, हो सकता है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं या बाहर इतने हैं जो ये नहीं खरीद सकते, और मेरे पास पैसे हैं तो क्या मैं 4 किताबें एक्स्ट्रा नहीं ले सकती? बात समझ गए ना, ये वो करंट नेकियाँ होती है जिसका अकाउंट फ़ौरन ही खुल जाता है। इवन आप देखिए कि ये हॉल जो आपका रेनोवेट हुआ है, मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये तो काम इतना हैफेजर्ड हुआ और अभी स्टिल हो रहा है, अभी बहुत काम है, दिन ब दिन देखेंगे आप इसमें चेंजेस आएंगी। आज पहले से बड़ा लग रहा है, खुला लग रहा है, कल आगे जाएंगे और भी होगा। अब बाहर से लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आपने हमें इसमें हिस्सा नहीं दिया। मैंने कहा यहाँ तो इसमें भी किसी ने हिस्सा नहीं डाला, ये तो पता नहीं हो कैसे गया और हो कैसे रहा। लेकिन जिनकी नज़र अपने नफ़े पे, वो आके पूछते हैं, और पूछना चाहिए ये इसी कहाँ से आए हैं, ये इसका बिल किसने दिया, क्योंकि इसमें बैठ कर कुरान पढ़ रहे हैं, ये कारपेट कहाँ से आया है, दरख्तों से तो कुछ नहीं लगता। तो ये जो आयत है ना आपको मुझे ये बता रही है कि इल्म के ऊपर खर्च करना अपनी आदत बना लो। और एक जुमला मैं अक्सर बोलती हूँ, आज भी बोलती हूँ, जो कौम कलम ख़रीदने पे, किताब ख़रीदने पे पैसा लगा लेती है ना, उसको हथियार नहीं ख़रीदने पड़ते, फिर उसको अपने बच्चों को नशे से बचाने के लिए हॉस्पिटल नहीं बनाने पड़ते, फिर उनको गैंग्स के साथ मुकाबले के लिए पुलिस हायर नहीं करनी पड़ती। नबी सल्लम और असहाबाए कराम की कामयाबी इसी में थी, वो इल्म को अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत समझते थे। अबू हुरैरा जैसे शख्स ने शादी नहीं की नबी की ज़िंदगी में कि कहीं मैं बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों में पढ़ के इसको ना ले सकूं, भूख से मर रहे होते थे। आगे वाक्य आएगा इंशाल्लाह सुनेंगे, तो क्या पता चला कैसे लोगों पे खर्च कीजिए जिनको इल्म का शौक है। एक ये कि सबको फ्री कर दें तो फिर क्वालिटी वही होगी जो आज हमारी मस्जिदों मदरसों में चल रही है, टूटी हुई कुर्सियों पर और जो कुछ भी है। एक ये कि इसको रखिए दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के लेवल पे, हम पे करेंगे, हम स्पॉन्सर करेंगे, बाकियों को हम देंगे, आप अपने ऊपर क्यों लें। फिर देखिए दीन के पौधे पे क्या बहार आएगी। मैं कहती हूँ दीन का इदारा स्कूल ऐसा हो कि एक दफ़ा अंदर आकर तो कोई कह सके ना कि वाह अल्लाह तेरी शान, ये तेरे काम के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए थी, यकीन कीजिए। और ये चीज़ जब तक हम मुसलमानों में नहीं आएगी, हमें दीन की कदर भी नहीं आएगी। जब तक दीन के इदारे हमारे घरों से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो जाएंगे, साफ़ कंफर्टेबल आरामदेह माहौल, तब तक दीन हमें घटिया लगेगा। हमारे बच्चे स्कूलों में जाएं इतने आला स्कूल, और मस्जिद में जाएं तो मौलवी साहब डंडे से मार के पढ़ाएं, चटाई पे बैठे हैं और चटाई को भी चुभते हुए बच्चे की टांग में घुसाओ, तो फिर दीन गरीब लगेगा। तो एक सवाल करके आगे चलती हूँ, क्या हमारा दीन गरीब है? क्या हम गरीब लोग हैं? क्या हमारे पास पैसे नहीं है? जाकर ज़रा सेलों के साइन और मॉल्स को बाहर से तो देखिए। कुछ जगह ऐसी हैं हमारे मुल्क में कि वहाँ लोग 25-25 हज़ार रुपये का एक डिनर करते हैं फैमिली के साथ। अगर नहीं पता तो मेरे से आकर एड्रेस ले लीजिएगा, शायद ईद का डिनर आपके बच्चों का ड्यू हो, वहाँ जाके खिलाते हैं लोग। मैं अक्सर जब बाहर से आती हूँ तो मेरी बड़ी नज़र होती है, ऐसे ही हमारी एक आदत होती है ना, पाकिस्तान में कितने का वहाँ कितने का। तो मैं जिनके घरों में अपने मेहमान होती हूँ तो सब्ज़ी लेके आए तो मैं पूछती हूँ यहाँ भिंडियाँ कैसे किलो हैं, करेले कैसे हैं, तो फिर वो लाशौरी तौर पे हम बाहर की कीमतों से अंदाज़ा लगाते हैं ना। ऐसी फितरी है, कोई इसमें क्यूरियोसिटी नहीं होती, बस एक देखना होता है कि हमारे मुल्क में लोग कैसे रहते हैं। मेरी ज़ुबान उंगली के नीचे दबी रह जाती है जब मैं इस मुल्क में कपड़ों के रेट, सब्जियों के रेट, गोश्त के रेट, बेकरी के रेट देखती हूँ। मैं कहती हूँ हमारे भाई बहन कैसे इतना खर्च करते हैं। एक मेहमान आता है, कहते हैं सीधी सी बात है 1,000 का नोट दो ड्राइवर को, तो वो दो तीन चीज़ें चाय के साथ सामान लाएगा और आप उसको सिर्फ एक चाय पिलाएंगे जिसमें कोई पैटीज होंगे, कोई बिस्किट होंगे, कोई उसमें एक दो चीज़। क्या मैंने गलत कहा कि सही? 1,000 रुपया सिर्फ एक चाय है, और फिर भी आपको शर्म आ रही है कि आपने खाना नहीं पूछा। और अगर एक खाना पकाते हैं, मैंने पूछा अपने भाई से पिछली दफ़ा आई, इस समय मौके नहीं मिल रहा, आप मुझे मौके नहीं दे रहे। पिछली दफ़ा मैं आई, मैंने अपने भाई से पूछा, हमारी फैमिली में बहुत करीब शादी एक हुई, तो आपको पता है कि सुन्नत भी कह लें या रस्म दुनिया की शादी की दावत करते हैं लोग, तो उसने सोचा कि घर में इतने लोगों को क्या बुलाना, 2-4 लोग करके 25-26 लोग कितने होंगे, तो कोई एक रेस्टोरेंट उसके होगा वाकफियत में, उसने सबको उधर बुला लिया, हम भी गए। मैं नहीं होता अच्छा जो भी ठीक, उन्होंने अलग हॉल छोटा सा कमरा लेके, मेरे लिए 25 से 30 लोग हम थे। तो मैंने ऐसे ही भाई से पूछा कितने पैसे लगे, मेरी चीख निकल गई उसकी कीमत सुन के। इतने पैसे तो मेरे लिए किसी की छोटी सी बारात को खाना खिलाने में लग जाते हैं। मैंने कहा इतने पैसे? कहते घर पकाते इससे ज़्यादा लगने थे, यहाँ तो सब एक एक प्लेट में खा के आए हैं ना, घर में तो डिशें पकनी थी, तो खेचल भी बड़ी, तो इतने ही लगते हैं बहन खा लो। बिलीव मी 1,000 रुपया यहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल अब 100 रुपया बन चुका है। तो हमें ये चुभता है अपने बच्चे पे लगाते हुए, हमें तो उसके सर पे सदका डालकर 2,007 और डाल देना चाहिए, कहला मेरे बच्चे को बीमारी में से बचा लेना, ये डॉक्टर को ना देना पड़ जाए। जितना दिल अल्लाह के रास्ते में खुलेगा, अल्लाह आप पे रहमतों की बारिश करेगा। ये क्लॉग है, बुखल के क्लॉग, यहाँ वो दिल में क्या आ जाता है, क्लॉट आता है ना, हार्ट अटैक जब होता है तो दिल में क्लॉट आता है ना, ये जो बुखल है ना ये क्लॉट है। एक दफ़ा खींच के इसको फेंके फिर देखिए खून कैसे सर्कुलेट करता है। जितना देंगे उतना देना आसान लगेगा और जितना रोकेंगे उतना रोकना आसान लगेगा। फिर आगे देखिए आयत 275 से 279 तक सूद का जिक्र है। अल्लाह ताला ने सूद के बारे में बताया कि अल्लाह के नज़दीक वो बड़ा बखील शख्स है जो दूसरों की मजबूरियों से इसका खून पीता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा अगर तुम अल्लाह की राह में माल खर्च नहीं कर सकते तो कर्ज ही दे दो। और आयत 280 को आयत दैन यानी कर्ज की आयत कहते हैं, यानी कर्ज के मामलात बयान करने वाली। اور آیت 284 میں اللہ نے بخیل کو بتا دیا کہ آج جتنا بھی بخل کرو گے کل قیامت کے دن اس کا حساب لیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں تک سورت بقرہ کا خلاصہ پورا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ تھوڑی سی آیتیں ہیں لیکن اس میں بخل کی بہت ساری باتیں ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں سورت آل عمران شروع ہوتی ہے, پہلی ہی آیتوں یعنی آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے. یعنی بخیل اکثر اپنے بخل کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے, اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں دوسروں سے چھپا لوں گا تو اللہ سے بھی چھپا لوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو دلوں کے بھیدوں کو جانتی ہے وہ خبر دے رہی ہے کہ تم جتنا بھی چھپانا چاہو کل قیامت کے دن سب کے سامنے کھول کے رکھ دوں گا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 14 سے 15 نوٹ کریے سورت آل عمران کی. اللہ نے دنیا میں لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈال دیں, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, تو اللہ بخل کرنے والوں کو رغبت دلاتے ہیں کہ دیکھو صرف ان دنیا کی چیزوں پر ہی ریجھ جاؤ گے تو کل جنت نہیں ملے گی. آپ کہہ سکتے کہ اس پورے پارے کے اندر مال کے خرچ کرنے کی بات ہے کہ یہ مال جو آج تمہیں اللہ کے راستے میں لگانے کے بعد کل ہمیشہ کی زندگی کی خوبصورتیاں مل جائیں گی, اگر آج تم نے اس کو خرچ نہ کیا کل لے کے پھرو گے اور کوئی قبول نہیں کرے گا. آپ دیکھیے کہ سود, پھر قرض, پھر پلیج جس کو آپ رہن رکھنا کہتے ہیں, اس طرح کی باتوں کا قرآن پاک میں آنا کیا بتاتا ہے کہ قرآن صرف نماز روزے کا طریقہ سکھانے کے لیے نہیں آیا. پھر اسی طرح سے سورت آل عمران شروع ہوتی ہے, پہلی ہی آیتوں میں اللہ نے بتا دیا کہ میرے سے تم چھپ نہیں سکتے. دیکھیے ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ ہم یہ فیل کراتے ہیں ہی نہیں, افورڈ کر سکتے ہیں فیل کراتے ہیں کر ہی نہیں سکتے, چھپا لیں گے اگلا کیا کہے گا آپ کو, اللہ کو پتا ہے, ادھر سے بچائیں گے ادھر سے نکل جائے گا. چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں, اللہ کے راستے پہ آپ کو 1000 خرچ کرنا تھا, آپ کسی بھی طرح بچا لیتے ہیں, اللہ نہ کرے گھر میں ٹوٹی خراب ہو گئی, پلمبر آئے گا کچھ سامان لے کر آئے گا, 2000 روپے کا خرچہ آ جائے گا. آپ میں کہیں گے شکر ہے 2000 کا خرچہ آیا ہے, میں نے وہاں سے 1000 بچایا تھا نا تو وہ ڈال کر 2000 پورے کر کے دے دوں. آپ کو مجھے نہیں پتا وہ 2000 پڑھنے ہی نہیں تھے فٹیک اگر 1000 میں جان چھڑا لیتے. تو بچا بچا کے نہ رکھے سے کہ تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. بیوی شوہر سے چھپائے اچھا لگتا, شوہر ہو کروڑ پتی اور بیوی کو فیل کرائے ہے ہی کچھ نہیں, کنگلا ہوں مال ہی نہیں ہے, اچھی بات ہے. بعض لوگ انسانوں سے چھپا لیتے ہیں, اللہ کہتا ہے تم مجھ سے نہیں چھپا لو گے. اس کے بعد آپ دیکھیں دنیا کی محبتیں 14-15 آیت میں, یہ ایک ایک محبت سارا وقت ہم اس پہ خرچ نہیں کرتے. آج بھی پاکستان میں ایک عام درجے کا صوفہ کتنے کا آتا ہے کسی کو اندازہ ہے تو بول دیں, اپنے حساب سے 50,000 سے شروع ہی ہوتا ہوگا میرا خیال ہے, وہ 1,50,000 کا ہوگا اگر کسی برانڈ سے لے لیں, شو روم میں جا کر دیکھیں اپنی مرضی کا, اس میں کچھ چینجز کرا لیں تو 2,00,000 کا بھی ہوگا. دیتے ہیں نا کیونکہ ہمیں پتہ صوفے کی ضرورت ہے. گاڑی کتنے کی آتی ہے آپ کے ملک میں, کتنے کی آتی ہے ایک نارمل گاڑی؟ 1,00,000 کی. اللہ ہو کر میں تو نہیں لوں گی, میں اپنے اتنے پیسے کی لوں, میرے پاس اتنی فری گاڑی ہیں میں نے نہیں لینی گاڑی. اب آپ دیکھیے کہ ہم خرچ کرتے ہیں نا دن رات کرتے ہیں. اب عید گزری ہے, ایک بچے کا عید کا جوڑا کتنے کا بنتا ہے کوئی بتائے گا؟ نارمل ایک بچے کا سوٹ اچھا کتنے کا آ جاتا ہے؟ 1500 سے 2000 روپے کا بچے کا جوڑا, اور بچہ جاتے ہی مٹی میں ڈال دے تو پھر تھپڑ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ تو پھر لیتے ہیں سارے بچوں کے لیے, ایک کا لے لیں ایک کا چھوڑ دیں. میکڈونلڈ کا برگر کتنے کا ملتا ہے؟ ادھر ہے ویسے میکڈونلڈ کے نہیں, کوئی اور نام میں نے پڑھا ہے. فرائی چکن کا برگر کتنے کا آتا ہے کوئی بتایا آپ میں سے؟ 260 کا. اور تو اگر چار بچے جائیں تو ایک کو لے کے دیتے ہیں کہ سب کو؟ تو بس سمجھ آ گیا, دنیا کے تو سارے معاملے چلتے ہیں. کبھی بھی بخل نہ کریں اپنی ذات پہ یا اپنے بچوں پہ یا اپنے گھر والوں پہ, کھول کے دل دین کے لیے لگائیے, اللہ ان کو بیماریوں سے بچائے گا اور اللہ اس کی رحمت سے آپ دیکھیں کہ ان کو کیسے بچائے گا. ہمارے اسلاف کی مائیں, امام ربیع کا واقعہ پڑھیے جا کے, شوہر اتنے سے پیسے دے کر गायब हो गए, किसी अच्छे काम में चले गए, सारी ज़िंदगी आई ही ना। बच्चा जवान हुआ, वापस आए, रास्ते में मस्जिद में नमाज़ पढ़ी तो वहाँ एक बड़ा प्यारा छोटी सी उम्र का बच्चा कुरान पढ़ रहा है, बच्चे से मेरा यंग लड़का। कहते हैं कितने खुशकिस्मत होंगे इसके माँ बाप। वहाँ से निकले, घर आए, इतने साल का शौहर जो छोड़ के गया है वो है और बीवी सामने है। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, किधर से गए, क्या हुआ, तुम्हें तो फिक्र ही कोई नहीं मेरी है। खैर बैठे थोड़ी देर बातचीत की, होंगे कोई दिल के ऐसे, कहने लगे जो तुम्हें पैसे दे गया था वो किधर है, इतने साल बाद शौहर आया तो पैसे ही पूछ रहे। कहती आप बैठिए तो सही, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी देर बाद बेल बजी तो बाहर देखा तो वही जवान बच्चा काली दाढ़ी में खूबसूरत चेहरे वाला घर में आता है। कहती है बेटा उठो अपने बाप को सलाम करो। कहने लगी ये है वो आपका बच्चा जो मेरी गोद में डाल कर गए थे, और वो जो पैसों की पोटली दे गए थे सारी इसकी तालीम पे लगा दी है मैंने। फिर समझ आई ये वही बच्चा है जिसके पीछे भी नमाज़ पढ़ के आया हूँ। वो माएँ तो अपने बच्चों के दीन पे लगा कर शुक्र करती थी, आज हम बच्चों को बिगाड़ के खिलौने ले देते हैं। ये एक खिलौना कितने का आता है आजकल, कंप्यूटर गेम कितने की आती है, टैबलेट और क्या कहते हैं स्पिन, कई नाम होते हैं ना। आप देखिए जो चीज़ें हम बच्चों के शौक और एंटरटेनमेंट और खाने के नाम पे लगाएं उसकी हैसियत ज़्यादा है या दीन की। तो क्या अल्लाह ताला आपको मुझे सिखा रहा है कि जुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन्निसा वलबनीना वलकनातीरिल मुकन्तरति मिनज़्ज़ाबी वलफिद्दा, पूरी लिस्ट है, सब पे खर्च करो खुशी से लेकिन तुम दीन पे खुशी से खर्च ना करो तो वबाल नहीं आना तो और क्या होना है, नस्लें नहीं बिगड़नी तो और क्या होना है। तो अल्लाह कहते हैं कल की जन्नत को पाना है तो दुनिया में दिल को बुखल से ख़त्म करना पड़ेगा, वरना तुम तो जन्नत की नेमतें शेयर नहीं करोगे। तो कह लीजिए कि पूरे पारे का उनवान है माल और दौलत, इसको अल्लाह के रास्ते में लगाओ, खर्च करो, कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ वापस मिल जाएगा। अपने आप को तुम अल्लाह के हाथों में रखो, फिर देखो अल्लाह के खजाने कितने बड़े हैं। और आयत 26-27 आले इमरान, कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा, अल्लाह मालिकुल मुल्क है, अल्लाह एहसास दिलाते हैं बादशाहों का बादशाह मैं हूँ, तुम थोड़ा सा लेकर इतने बड़े बन गए हो। इस जात को देखो जो इतना कुछ रखते हुए भी इतना बेनियाज है कि लोगों को दिन रात देता है और उसके खजानों में कोई कमी नहीं आती। सच बताइए देने से अगर कमी होती तो अल्लाह के खजानों में कमी हो जाती, कभी नहीं कमी हुई। असल में जो देता है उसको मिलता है। इसके बाद फिर कुछ कुर्बानियों का जिक्र है। बखील शख्स को मरियम की माँ की कुर्बानी सिखाई जा रही है कि देखो एक औरत की सबसे कीमती चीज़ उसकी औलाद होती है, मानती हैं माएँ, वो इसने अपने रब की राह में लगा दी। इन्नी नजर तु लकमा फी बतनी मुहर्ररा, ऐ मेरे रब जो मेरे पेट का बच्चा उसको तेरे नाम लगा देती हूँ। ज़रा जुमला सुनिएगा इस पे आप, तो क्या तुम अपनी औलादों का बुखल तो नहीं कर रहे कि इनको अल्लाह के रास्ते में लगाने से अपने आप को दूर खींचते हो। यानी मरियम की माँ ने तो बच्ची अल्लाह के रास्ते में लगा दी, हम बच्चों पे अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करें तो फिर क्या मरियम जैसी बेटियाँ पैदा होंगी हमारी, नहीं फिर वो घर से भागने वाली बेटियाँ पैदा होंगी और भगाने वाले बेटे पैदा होंगे। कितना फ़र्क है उस माँ में और आज की माँ में, इल्ला माशाल्लाह। फिर इसी तरह हज़रत मरियम और ईसा के नाते से बहुत से वाक़यात हैं जिनको सामने रखें तो दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह आज वो लोग जो सिर्फ बुखल की वजह से इस्लाम कबूल नहीं कर पा रहे वो अभी तक ईसाई और यहूदी कहलाते हैं, इनके दिलों को खोल दे। आयत 75 और 76 को देखिए, तो अल्लाह ताला ने ऐसे किरदार से बखील शख्स को मुतारफ़ कराया जिसको बतौर अमानत एक बड़ा ख़जाना भी दे दिया जाए तो वह इसको पूरे का पूरा वापस कर देता है। साथ ही बता दिया कि कोई तो ऐसा है जो सिर्फ़ एक दीनार पर अपना ईमान बेच देता है, क्योंकि बुखल का ताल्लुक बहुत ज़्यादा माल से नहीं होता। याद रखिए बखील कोई गरीब शख्स नहीं होता बल्कि बुखल का ताल्लुक ही ज़्यादा दौलत के साथ है, होती है दौलत खर्च करने का हौसला नहीं होता। तो अल्लाह ताला बताता है कि कुछ तो एक पैसे पर अपना ईमान बदल देते हैं और कुछ हज़ारों के बावजूद अपने आप को बुखल से आज़ाद कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वह हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगियों में गौर व फिक्र करें और तवज्जो रखें कि जो चीज़ें इसने हमें दी हैं ان کو اس کے حکم کے مطابق خرچ کرنا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں نا اس پہ خرچ کرنا آسان ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, کسی کو کھانے پینے کا شوق ہے, وہ مہنگے ریسٹورانٹس میں کھانا کھاتا ہے پھر خوش ہوتا ہے, کہتے ہیں اور کس لیے کماتے ہیں جی, کھائیے حلال ہے, خود بھی کھاتے ہیں دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. کسی کو پہننے اوڑھنے کا شوق ہوتا ہے, وہ کہتا ہے ہم پہن رہے ہیں, اللہ کا شکر کر رہے ہیں جی, اللہ نے دیا ہے پہن رہے ہیں, کھا رہے ہیں, عبادت بھی کر رہے ہیں, دے بھی رہے ہیں, کھا رہے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. جس چیز سے محبت ہے نا اس پہ خرچ چبھتا نہیں ہے, اور اگر محبت نہ ہو تو ایک روپیہ دینا بھی بوجھ لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو پورے پارے کی آیتوں کا ایک ہلکا سا سمپ تھا.